नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों की उनकी एक विशेष पुस्तक के जरिए गहराई से समझने की कोशिश करेंगे।
जी,
पुस्तक का नाम है महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण। ये 1988 से 90 के बीच जो उनकी क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला आई थी उसी का हिस्सा है।
जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये।
और दिलचस्प बात यह है, पूज्य गुरुदेव ने तो इसे अपना ज्ञान शरीर ही कहा था।
बिल्कुल, उन्होंने वसंत पंचमी 1990 को वंदनीय माता जी से कहा भी था कि मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा।
हाँ, और उन्होंने आग्रह किया था कि उनके इस ज्ञान शरीर को, मतलब इस साहित्य को, जन जन तक पहुंचाया जाए।
जी, सभी बच्चों से यही कहा था उन्होंने।
तो आज हम इसी ज्ञान शरीर के एक खास पहलू, प्रतिभा पर बात करेंगे। पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये प्रतिभा आखिर है क्या? क्या ये बस कोई टैलेंट है?
नहीं, देखिए, ये सिर्फ कोई हुनर या काबिलियत भर नहीं है। पूज्य गुरुदेव इसे एक परिष्कृत व्यक्तित्व मानते हैं, एक तरह की दिव्य चेतना।
दिव्य चेतना? अच्छा।
हाँ, यही वो चीज है जो मनुष्य को, मतलब हम इंसानों को, बाकी प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है।
हाँ, वो तो है।
पर बुद्धि और कुशलता, इसी के बल पर तो मनुष्य ने इतनी तरक्की की है।
और इसमें सिर्फ बुद्धि ही नहीं है, है ना? इसमें वो आदर्शवाद, साहस, दूरदर्शिता, नीतिनिष्ठा, इन सबके एक मेल है शायद।
बिल्कुल सही, ये सब चीजें मिलकर ही प्रतिभा बनती है। ये असल शक्ति है, मतलब पैसे, दिमागी तेजी या शारीरिक बल से भी ऊंची चीज,
क्योंकि ये उनका सही इस्तेमाल करना सिखाती है।
एकदम, पूज्य गुरुदेव ने तो तुलना भी की है कि जैसे गोताखोर को मोती खोजने के लिए प्रयास करना पड़ता है, वैसी प्रतिभा को अर्जित करना पड़ता है, मेहनत लगती है।
तो ये इतनी जरूरी क्यों है? मतलब व्यक्ति और समाज के लिए इसका क्या महत्व है?
देखिए, यही तो प्रगति का आधार है, व्यक्ति की भी और समाज की भी। आप सोचिए, आदिम काल से आज तक का जो सफर है इंसान का,
हाँ,
वो प्रतिभा के विकास से ही तो संभव हुआ है। इसके बिना तो, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इंसान दिशाहीन भेड़ों की तरह हो जाता है, दूसरों पर निर्भर।
हाँ, परावलंबी। और ये भी साफ किया गया है कि प्रतिभा कोई नकारात्मक चीज नहीं है, जैसे कोई आतंक फैलाए या दादागिरी करे, वो प्रतिभा नहीं है।
बिल्कुल नहीं, वो तो विकृति है। प्रतिभा तो सृजनात्मक होती है, कल्याणकारी, जैसे कस्तूरी महकती है या चंदन शीतलता देता है।
अच्छा।
और ये सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं उठाती जिसमें ये होती है,
बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देती है।
हाँ, जैसे गांधी जी, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, इनके व्यक्तित्व ने कितने लोगों को रास्ता दिखाया।
तो क्या ये मतलब हुआ कि प्रतिभा कुछ गिने चुने महान लोगों में ही होती है, आम लोगों में नहीं?
नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पूज्य गुरुदेव तो उदाहरण देते हैं कि कैसे श्री राम के साथ साधारण वानर भालू।
हाँ, वो पुल बनाने वाली बात।
जी, या राणा प्रताप के साथ भील सैनिक, रानी लक्ष्मीबाई के साथ सामान्य स्त्रियां। जब एक प्रतिभाशाली नेतृत्व मिलता है ना, तो सामान्य दिखने वाले लोग भी कमाल कर जाते हैं।
सही बात है।
और आज के समय में जो चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, स्वार्थपरता, इनसे निपटने के लिए तो ऐसे ही परिष्कृत प्रतिभा की सबसे ज्यादा जरूरत है।
समझ गए। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसको निखारा कैसे जाए, मतलब इसे विकसित कैसे करें? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दैवी अनुदान है।
हाँ, वो कहते हैं, पर साथ में ये भी साफ करते हैं कि ये मिलता उसी को है जो खुद कोशिश करता है, पुरुषार्थ करता है, अपना संकल्प, अपना समय, अपनी मेहनत,
वही काम आती है।
जी, दूसरों की कृपा से साधन भले मिल जाएं, पर विकास तो अंदर से ही होता है। गीता में भी तो कहा है।
हाँ, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेद।
बिल्कुल, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही शत्रु, अपने को उठाओ गिराओ मत।
तो इसके लिए करना क्या होगा?
इसके लिए पूज्य गुरुदेव निरंतर आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार, आत्मविकास पर जोर देते हैं। मतलब लगातार खुद को देखो, अपनी कमियों को पहचानो, उन्हें दूर करो,
अपने गुण कर्म स्वभाव को मांझना, सुधारना।
हाँ, और जो गलत आदतें हैं, अवांछनीयताएं हैं, उनसे जूझना, अच्छे आदर्शों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाना।
इसमें अच्छे माहौल का भी रोल होगा, जैसे सत्संग, स्वाध्याय।
बहुत बड़ा रोल है, अच्छे लोगों, अच्छी पुस्तकों का साथ बहुत मदद करता है। और चाहिए मजबूत इच्छा शक्ति, संकल्प,
जैसे फरहाद ने नहर खोदी थी।
हाँ, कुछ वैसे ही दृढ़ निश्चय। और एक और अच्छी बात यह है कि जब इंसान किसी ऊंचे मकसद में लगता है ना, जैसे समाज सेवा या नवसृजन,
हाँ,
तो प्रतिभा अपने आप निखरने लगती है। जैसे वो कहते हैं ना, मेहंदी पीसने वाले के हाथ खुद ही लाल हो जाते हैं।
ये बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन आपने कहा दैवी अनुदान या दूसरों का सहयोग, वो कैसे मिलता है? क्या उसका भी कोई आधार है?
हाँ, यही पर पात्रता की बात आती है। पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि कोई भी सहायता, चाहे वो दैवी हो या इंसानी, मिलती उसी को है जो उसके लायक होता है।
लायक मतलब?
मतलब जिसमें उसे संभालने की, उसका सही उपयोग करने की क्षमता हो। जैसे बारिश का पानी तो बरसता है, पर बर्तन में उतना ही आएगा जितनी उसकी धारिता होगी।
अच्छा, तो हमें अपनी पात्रता, अपनी क्षमता बढ़ानी होगी?
बिल्कुल, अंदर की तैयारी जरूरी है। व्यक्ति के अंदर की जो शक्ति है, जिसे गुरुदेव जीवट या प्राणाग्नि कहते हैं।
हाँ, वो अंदरूनी ताकत।
जी, वही असली चीज है। बाहरी सफलता उसी से आती है, और इसमें आत्मविश्वास का बहुत बड़ा हाथ है।
आत्मविश्वास?
हाँ, पूज्य गुरुदेव कहते थे कि आत्मविश्वास रस्सी को सांप और सांप को रस्सी दिखा सकता है, इतना प्रबल होता है ये।
ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब अगर व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता पर विश्वास करे और उसे जगाने का संकल्प ले ले,
तो वो साधारण से असाधारण बन सकता है। पुस्तक में कालिदास का, सैंडो पहलवान का और वो कैंसर की रोगी स्त्री का उदाहरण है ना?
हाँ, जिसने न सिर्फ खुद को ठीक किया बल्कि अस्पताल बनवा दिया।
बिल्कुल,
संकल्प और आत्मविश्वास का परिणाम।
तो कुल मिलाकर सार ये है कि प्रतिभा कोई ऐसी चीज नहीं जो बस जन्म से मिल गई।
बिल्कुल,
ये तो व्यक्तित्व का एक लगातार चलने वाला परिष्कार है।
बिल्कुल,
जिसे अपने प्रयास, मजबूत इरादे और सही दिशा से कमाया और बढ़ाया जा सकता है।
जी,
ये अंदर की वो शक्ति है जो बाहर कामयाबी लाती है।
और अंत में एक बहुत विचारणीय बात पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो युग है, ये नव सृजन का समय।
जी,
ये प्रतिभा को निखारने का एक सुनहरा मौका है। जैसे पारस पत्थर से छू जाने का समय हो, या कल्पवृक्ष की छाया में बैठने का अवसर।
बिल्कुल,
एक विशेष अवसर।
बिल्कुल,
तो इस मौके का फायदा उठाकर हम खुद को और समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए। और हाँ, प्रकाशक का भी यही आग्रह है कि ये जो ज्ञान शरीर है, इस पुस्तक माला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए।
जी, ये बहुत जरूरी है।